اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گم نام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے۔
اوم شانتی۔ بہت اچھا ہم سبھی نے گیت سنا، جس گیت میں خدا سے ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہے ہیں، تیرا نام کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تو رہتا کہاں ہے، یہ دنیا کو جنت بنا کے پھر دوزخ کیوں بنا دیا، تو دکھتا نہیں ہے، پردہ نشین رہتا ہے، اس لیے دیکھو سب نے اپنے اپنے بھگوان بنا دیے ہیں، ہے نا۔ کتنے سارے سوال، یہ سوال جس نے یہ گیت لکھا ہے، یہ سوال جس نے یہ گیت گایا ہے، اس کے ہیں یا ہم سب کے من میں بھی ایسے ہی سوال آتے ہیں؟ ہاں، ہم سب کے من میں بھی یہی سوال آتے ہیں، تو ضرور آج ہم ان سوالوں کا جواب پراپت کریں گے، معلوم کریں گے کہ وہ پرماتما کون ہے۔ پر اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنے کی آوشیکتا ہے کہ اس پرماتما کا میرے جیون میں کیا مہتو ہے، کیوں ضرورت ہے میرے جیون میں اس پرماتما کی، تو کیا کہیں گے؟ پریچے پیچھے پہلے ضرورت کیوں ہے مجھے اس کی، کیا اس کے بنا ہمارا کام نہیں چل سکتا کیا، کیوں ہم چاہتے ہیں ہمارے جیون میں پرماتما ہو، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ صبح ہی ہم نے دیکھا تھا ہم سبھی آتمائیں بیٹری کی طرح ہے، اور بیٹری ڈسچارج ہونا کے پرینام بھی دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ موبائل کی بیٹری ڈسچارج ہو جائے، ایک بھی ایپ کا درشن نہیں ہوگا، درشن تو کیا ورک بھی نہیں کرے گا، لیکن بیٹری چارج کر دو، بیٹری چارج کر دو، سارے کے سارے ایپ درشن بھی دیتے ہیں اور سیوا میں حاضر بھی ہو جاتے ہیں، اور اس لیے بیٹری کو چارج کرنے والا سورس کی آوشیکتا ہوتی ہے، ورنہ موبائل جو اتنی سویدھاؤں سے سمپن ہے، بیٹری کو چارج کرنے کا اگر سادھن نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی آج ہم نے صبح دیکھا کہ جس شانتی اور جس شکتی اور سکھ کو، گیان کو، پریم کو، آنند کو ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو میرا مول سوبھاؤ ہے، अर्थात वो सारे ऐप मेरे जीवन रूपी मोबाइल में तो आज भी उपलब्ध है, परंतु मेरे अपने होते हुए भी आज उसकी अनुभूति करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी तो कहते हैं, बहन जी कैसे कहूं मैं अपने आप को शांत स्वरूप, इतनी अशांति लगी पड़ी है, नहीं अनुभव होती वो शांति। तो मेरे पास होते हुए भी अनुभव करने में मेहनत, और ये इंडिकेशन है, ये संकेत है कि मेरा मूल स्वभाव तो मेरे पास है, लेकिन वो फंक्शन करे उसके लिए जो पावर सप्लाई होनी चाहिए थी वो बैटरी डिस्चार्ज है, पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, और वो मेरा शांति का ऐप, प्रेम का ऐप काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही होता है ना मोबाइल में। तो सोर्स चाहिए कि जिससे बैटरी को मैं चार्ज कर सकूं और पुनः सारी फैसिलिटीज का लाभ उठा सकूं। बेशक हमने सुबह कहा था कि मूल स्वभाव जिसको हम भूल गए थे उस तरफ अब मन बुद्धि को केंद्रित करना है, लेकिन काफी समय से मन बुद्धि भी तो निगेटिव दिशा में थे ना, कमजोर हो गए हैं ना। कमजोर व्यक्ति कितना मन बुद्धि मना एक चीज पे एकाग्र कर सकता है। आप देखो गैस सिलेंडर कभी खत्म हो जाए ना, और कुछ दिन ऐसा ही पड़ा रह जाए, फिर आप जलाने जाएंगे थोड़ी सी गैस मिल जाएगी आपको, फिर से मिल जाएगी, पर टेम्पररी लगेगा, अरे गैस है, लेकिन फिर थोड़ी देर में चला जाएगा। ऐसे ही ये जो है कि मन को दिशा देंगे, मूल स्वभाव का चिंतन करो, वो थोड़ी देर काम करेगा, लंबे समय नहीं। लंबे समय काम करे उसके लिए तो गैस सिलेंडर भरा हुआ भी चाहिए, है ना, वो सिलेंडर काम नहीं करेगा अभी, तो इस बैटरी को भरना पड़ेगा पावर हाउस से, और वो पावर हाउस है पिता परमात्मा, और इसलिए उस पिता परमात्मा की मेरे जीवन में जरूरत है। क्लियर। अब ये समझने के बाद जिस पिता परमात्मा की जरूरत है वो है कौन, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जहां तक आत्मा की बात है वहां फिर भी एक मान्यता है कि शरीर को चलाने वाली शक्ति, फिर उसको नाम कुछ भी दे डालो, आत्मा कहो, सोल कहो, रूह कहो, सेल्फ कहो, साइकी कहो, कॉन्शियंट एनर्जी कहो, चाहे कुछ भी कह दो, पर वो उस शक्ति की तरफ इशारा है जो शरीर को चलाती है। लेकिन जहां परमात्मा की बात आती है उसके लिए तो अनेक मान्यताएं हैं। एक तरफ बेशक हम कहते हैं कि वो एक है, यूनानिमसली वी एक्सेप्ट कि वो एक है, लेकिन दूसरी तरफ आपके भगवान जी कौन से हैं? आप किसको मानते हैं? ऐसा पूछकर हमने ही तो एक को अनेक कर दिया ना। दिख रहा है हमारी ही दो मान्यताएं एक दूसरे के विपरीत। एक तरफ एक भी है वो भी स्वीकार करती हूँ और एक तरफ उसको अनेक भी कह देती हूँ। विपरीत। और यही कारण है कि हम सब ने परमात्मा के नाम पर अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपने अपने भरोसे के अनुसार, अपने अपने निश्चय के अनुसार परमात्मा की एक छवि अपने हृदय में बना के रखी है। करते हैं ना हम सभी याद परमात्मा को, जहां मेरी आस्था बनी है उसको मैंने कह दिया ये तो मेरे परमात्मा है। लेकिन बावजूद इसके इतने सारे प्रश्न भी उठ जाते हैं ना। कहा ना मैंने इसलिए पूछे, ऐसे गीतकार के प्रश्न है या हम सबके हैं? हम सबके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न उठ जाते हैं। हालांकि एक छवि मैंने हृदय में उसकी बसाई है, फिर भी हम उसको कह बैठते हैं कभी कभी, तू बता तो सही, तू है कौन, तेरा असली रूप है क्या? तो इसलिए उस परमात्मा का सत्य स्वरूप जानने की आवश्यकता है। तो परमात्मा के लिए अनेक मान्यताएं हैं। कोई कहता है परमात्मा निराकार है, कोई कहता है नाम रूप से न्यारा है, कोई कहता है जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब परमात्मा है, कोई कहता है जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब परमात्मा है, कोई कहता है जितने भी संत महात्माएं गुरु महंत गोसाई हैं वो सब परमात्मा है। एक तरफ एक तरफ इतने सारे परमात्मा। और इसका नतीजा क्या होता है? मन उस पर टिकता नहीं है। आस्था के नाम पर एक छवि बिठाई यहाँ पर, लेकिन वो हमारी कैसी आस्था है, कैसा विश्वास है, उसका प्रमाण तो जीवन में जब परिस्थितियां आती है तब पता चलता है। क्या हमारी आस्था, हमारी आस्था वाले परमात्मा पर 100% है? उदाहरण के लिए, घर में एक परिस्थिति आई है, छोटा बच्चा बीमार पड़ा है, दवाइयों के ऊपर दवाइयां की जा रही है, डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर बदली किए जा रहे हैं, परंतु मजाल है कि बच्चे की तबीयत ठीक हो, बिगड़ती जा रही है। बेशक ऐसे समय पर हम अपने आस्था वाले परमात्मा को जरूर रिक्वेस्ट करेंगे ना हे प्रभु मेरे इस बच्चे की तबीयत ठीक कर दो। फिर क्या होता है, रिक्वेस्ट भी कर डाली, बच्चे की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेती है। कोई आते हैं मिलने, देखते हैं, अरे बच्चे की ये हालत, तुम क्या कर रहे हो? क्या करूं, कितने डॉक्टरों को दिखा दिया, कितना मैंने अपने परमात्मा को भी रिक्वेस्ट कर डाली, पर कुछ अंतर नहीं आ रहा है। वो सामने वाला कहेगा, सपोज वो श्री कृष्ण को परमात्मा मानता है, वो कहता है मैंने श्री कृष्ण के सामने खूब अर्जियां डाली है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सामने वाला कहेगा, ऐसे समय पर नटखट श्री कृष्ण को थोड़ी अर्जी डालनी होती है, वो तो नटखट है, नटखट। ऐसे समय पर तो वात्सल्य मूर्ति माँ की पूजा करनी होती है। वो माँ है ना, वो इस माँ का दर्द समझ लेगी, बच्चे को ठीक करेगी, उसकी करुणा बरसेगी। आप माँ का चालीसा करो, हमारी आस्था, हमारा जो श्री कृष्ण परमात्मा था वहां से शिफ्ट हुई, कहां पर, माँ पर शिफ्ट हो गई। कैसी आस्था है जो शिफ्ट हो जाती है, और सिर्फ एक पर शिफ्ट नहीं हुई, उसका भी चालीसा कर लिया, फर्क नहीं। अरे ऐसे समय पर माँ की पूजा नहीं, आपके घर में विघ्न आया है, विघ्न विनाशक गणपति की पूजा करनी होती है। हमारी आस्था शिफ्ट हो गई विघ्न विनाशक गणेश जी पर, उसकी भी पूजा कर डाली, उसका भी चालीसा पाठ कर लिया, बच्चे की तबीयत में सुधार नहीं आया। फिर किसी ने कहा, नहीं नहीं, ये संकट की घड़ी ऐसे नहीं टलेगी, संकट मोचन हनुमान जी का चालीसा करो, फिर मेरी आस्था वहां शिफ्ट हो गई, फिर वहां पे भी सब कुछ कर लिया, नहीं हुआ कुछ। फिर कोई आकर कहेगा, ये सब छोड़ो, ये जड़ मूर्तियां हैं, गांव में एक चैतन्य बाबा आया हुआ है, उस चैतन्य बाबा के पास जाकर आमने सामने मुलाकात करके अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो सलूशन देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी आस्था उस गांव में आए हुए बाबा जी पर शिफ्ट हो गई, और वो जो उसने कहा वो भी कर दिया, कुछ नहीं। फिर किसी ने कहा, छोड़ो बाबाजियों के चक्कर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मंत्र जाप भी कर लिया, वहां से भी आस्था उठ गई। ये सब करते करते बच्चा तो देह त्याग करके भी चला गया। अब तक तो आस्था शिफ्ट हो रही थी, लेकिन बच्चा जब देह त्याग करके चला गया, शिफ्ट तो क्या, आस्था ही खत्म हो गई। तो इसको कौन सी आस्था कहेंगे, ये कैसी आस्था है, कैसा विश्वास है, ये कैसी श्रद्धा है जो हर पल बदलती रहती है। और फिर खत्म भी हो जाती है, तो इसको विश्वास नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। तो इसको क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। और इसलिए कहा, मुझे वो परमात्मा जो सचमुच का परमात्मा है उसकी यथार्थ पहचान की आवश्यकता है, कि जिसकी यथार्थ पहचान होने से मेरी आस्था, जीवन में चाहे कुछ भी बातें आ जाए उससे मेरी आस्था हटे नहीं, तब जाकर मन एकाग्र होगा। और जब मन एकाग्र होगा तो उसकी पावर आएगी ना, और जब पावर आएगी तो बैटरी चार्ज होगी ना, और बैटरी चार्ज होगी तो मेरा मूल स्वभाव रूपी एप्स अपने आप सेवा में हाजिर हो जाएंगे ना, अपने आप सेवा में हाजिर हो जाएंगे। फिर अनुभव करने की जो आज दिक्कत हो रही है वो दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए हम अपने आप को शांति की स्टेट में अनुभव कर पाएंगे, इसीलिए हम अपने आप को बातें बाहर कुछ भी हो लेकिन मैं तो खुशनुमा हूँ, अपनी स्थिति से परिस्थिति को बदल डालने की हमारे में क्षमता आ जाएगी। आज क्या हो रहा है, परिस्थितियां मेरी स्व स्थिति को बदल देती है। हम सुबह उठते हैं, अच्छी खासी गहरी नींद की है, सुबह मन प्रसन्न है, शांत है, पर थोड़ी सी कुछ बात आई, प्रसन्नता खत्म। तो मेरी स्वस्थिति तो बहुत अच्छी थी, प्रसन्न चित्त था मैं, शांत चित्त था मैं, लेकिन बात ने मेरी स्थिति को हिला दिया। लेकिन बैटरी अगर चार्ज होगी ना तो परिस्थिति की मजाल नहीं जो मेरी स्वस्थिति को हिला दे, लेकिन स्वस्थिति परिस्थिति को क्या कर देगी? परिवर्तन कर देगी। तो कितना इम्पोर्टेंस है बैटरी को चार्ज करने का, और फिर कितना इम्पोर्टेंस है उस पावर हाउस का जिससे इस बैटरी को हम चार्ज कर सके। तो परमात्मा का सत्य स्वरूप जो अनेक मान्यताएं हैं, एक ही व्यक्ति के लिए अगर अनेक मतें मिल जाएं, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? तो ऐसे ही तो हो रहा है परमात्मा के लिए भी, है वो एक लेकिन इतनी सारी मान्यताएं, मन कंफ्यूज हो गया है, आखिर इसमें से सत्य क्या है? तो इस कंफ्यूजन से निकलने का एक बहुत सुंदर तरीका है, और वो बहुत सुंदर तरीका, बहुत सिंपल तरीका क्या है? जिस परमात्मा का मुझे सत्य परिचय चाहिए, उसके सत्य परिचय के लिए मैं परमात्मा शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। परमात्मा शब्द दो शब्दों के योग से बना है, परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। अब इन दो शब्दों में से पहले वाले शब्द पर मन बुद्धि को फोकस कीजिए, परम सुप्रीम। क्या अर्थ होता है परम का, क्या अर्थ होता है परम का? पहला हाईएस्ट और सबसे ऊंचा, जैसे दुनिया में कोर्ट होती है ना, कुछ बात हो गई है, कोई केस बन गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, हमारे फेवर में फैसला नहीं आया, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, वहां पर भी हमारे फेवर में नहीं आया, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, वहां पर भी नहीं आया, तो है कोई दूसरी कोर्ट दुनिया की? दुनिया की तो कोई कोर्ट नहीं ना, वो थी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, माना वो एक ही होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ढेर सारी, हाई कोर्ट ढेर सारी, सुप्रीम और वो सबसे ऊंची। तो सुप्रीम का अर्थ होता है सर्वोच्च, अर्थात जो सबसे ऊंचा है, जिससे ऊंचा और कोई नहीं, उसको कहते हैं सुप्रीम, उसको कहते हैं परम, उसको कहते हैं सर्वोच्च। अब हम और आप चाहे कितनी ही डिग्रियां ले ले, चाहे कितना ही हुनर सीख ले, चाहे कितनी ही प्रमोशन के साथ आगे आगे बढ़ते जाएं, हमारे से ऊंचा कोई होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? एक तो कोई मिलेगा, और चलो ना भी मिले, यहाँ पर हो सकता है मैं हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाऊं, वो तो पोजीशन ना, दुनिया के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, लेकिन जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया और इतना पढ़ा लिखा के लायक बनाया कि मैं आज इतनी पोजीशन पर पहुंची, भल मेरे वो माँ बाप अनपढ़ है, मैं इतनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गई हूँ, बावजूद इसके मैं ऊंची या मेरे माँ बाप ऊंचे हैं? मेरे माँ बाप ऊंचे ना, मेरा टीचर, प्राइमरी टीचर जिसने मेरा फाउंडेशन पक्का किया था, वो आज भी प्राइमरी टीचर है, और मैं तो इतनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गई हूँ, बावजूद इसके मैं ऊंची या मेरा टीचर ऊंचा? तो दिख रहा है, वो व्यक्ति जो भी माँ के गर्भ से जन्म लेगा, वो कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। और कोई ऊंचा मिले न मिले, माँ बाप तो सदा ऊंचे रहेंगे, है ना? तो परमात्मा को अगर सुप्रीम कहा, परम कहा, सर्वोच्च कहा, इसका मतलब ही तो क्या हुआ, उसकी महिमा क्या कहते हैं, वो अजन्मा है उसकी महिमा, कि वो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, और चूंकि जन्म नहीं लेता है तो कर्म भी नहीं करेगा, तो कहा वो अकर्ता है, और चूंकि कर्म नहीं करेगा तो कर्म फल भोगने की भी बारी कहाँ से आएगी, तो कहा वो अभोक्ता है ना? ये महिमा उसकी, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। तो कर्म फल किस रूप में आते हैं? सुख दुख, पाप पुण्य, लाभ हानि, निंदा स्तुति। चूंकि जन्म नहीं लेता, कर्म नहीं करता, कर्म फल नहीं भोगता, इन चक्करों से मुक्त मुक्त है, इन बंधनों से मुक्त है। इसलिए उसकी महिमा किन शब्दों में करते हैं, ओ मुक्ति दाता हमें मुक्ति दे दो। मुक्ति वही दे सकता है ना जो स्वयं मुक्त हो, जो स्वयं बंधनों से मुक्त हो, जो स्वयं चक्करों से मुक्त हो। तो परमात्मा देह के बंधन से मुक्त है, कर्म बंधन से मुक्त है, देह के संबंधों से भी मुक्त है। और इसीलिए हम सभी देह के बंधन में, कर्म बंधन में, देह के संबंधों के बंधन में जब अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, हे भगवान बस मुक्ति दे दो, है ना, ऐसे करते हैं ना। वो मुक्ति दाता अजन्मा, क्लियर। अच्छा, चूंकि वो अजन्मा है, वो अपरिवर्तनशील भी होगा। कैसे, जैसे हम आत्माएं जन्म लेते हैं तो आत्मा बैटरी यूज हो रही है तो चार्ज से डिस्चार्ज पर पहुंच रही है, अर्थात पहले तो फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे थे लेकिन बाद में डिस्चार्जिंग पर आने पे हार्मफुल रेडिएशन भी फेस कर रहे हैं। यही हमारे जीवन में हो रहा है, नेगेटिविटी कितनी झेल रहे हम सभी। तो कभी सुख का मूड है, कभी दुख के मूड में है, अर्थात स्थिति एक रस नहीं है, अर्थात हमारी स्थिति परिवर्तनशील है। और परमात्मा चूंकि अजन्मा है, उसकी स्थिति में उसकी, क्योंकि वो तो है ही पावर हाउस, तो कहा कि उसकी बैटरी में कोई चेंज नहीं, इसलिए वो क्या है, अपरिवर्तनशील है, वो एक रस है। और इसलिए उसकी महिमा क्या की जाती है, तू सत चित आनंद है। आनंद माना ही सुख दुख से परे, सत माना तू सत्य है, अविनाशी है। चित्त माना तू चैतन्य है। आनंद माना आनंद का धनी है। और इसीलिए तो उससे आनंद मांगते हैं, हे सच्चिदानंद मुझे भी आनंद की अनुभूति करा दो। तो वो अपरिवर्तनशील है। और साथ साथ जो अपरिवर्तनशील है वो अपरिमित भी होगा। अपरिमित माना जिसके पास कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो अनंत है, वो बेहद है, यही कहते हैं ना। तो किस किस में, और अनंत ही तो सबको दे सकता है ना। जो अनंत होगा, जो अनलिमिटेड होगा, जो असीम होगा, जो इन्फिनिट होगा, जो अथाह होगा, जो अखुट होगा, वही तो सबको दे सकता है। इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं, देने वाला वो दाता है। कैसा दाता है वो, सदा सर्वदा का दाता है, सर्व का दाता है। बैटरी भी चार्ज दे रही थी पर लिमिटेड, लिमिटेड बैटरी का चार्ज खत्म, देना बंद, जब तक कि पावर हाउस से कनेक्ट करके इसको फिर से चार्ज नहीं किया जाए, ये चार्ज नहीं देगी। तो लिमिटेड, तो बैटरी भी दे रही है लेकिन लिमिटेशन है, लेकिन परमात्मा अनलिमिटेड। अजन्मा कहा ना, आज मोबाइल के अंदर हम बैटरी यूज करते हैं तो एप्स काम करते हैं, मोबाइल काम करता है, विज्ञान सुख सुविधाएं देने में लगा हुआ है ना मनुष्य को। ये रोज क्या बैटरी को चार्ज करो फिर डिस्चार्ज होती, फिर चार्ज करो फिर डिस्चार्ज हो जाती है, भूल जाते हैं तो कितने काम अटक जाते हैं हमारे। विज्ञान कुछ ऐसा कर दे ना, उसके अंदर ही पावर हाउस डाल दे, हो सकता है? नहीं हो सकता है। तभी कहा वो पावर हाउस है, इसीलिए तो जन्म नहीं ले सकता है। ताकत ही नहीं एक शरीर के अंदर उतनी पावर आ जाए, फट जाएगा, हो जाएगा ना, ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। तो जो अजन्मा है वो अपरिमित है, इसीलिए तो जन्म नहीं ले पा रहा है। वो अपरिमित है, अथाह भंडार है उसके पास, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, किस किस बात में वो परिमित है, कौन कौन सी उसके पास संपदा है जो असीम है, अथाह है, अखुट है, तो ज्ञान की संपदा है, जिस कारण से उसका एक टाइटल है वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब, सर्वज्ञ का मतलब जिसको इस लोक का भी ज्ञान है पर लोक का भी ज्ञान है। हम भले भजनों में कीर्तनों में गाते हैं, बोलते हैं अरे भजन करो कीर्तन करो नाम जपो ताकि ये लोक तो सफल हो पर लोक भी सफल हो, पर पता होता है कौन सा परलोक होता है? ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन उसको वो परलोक क्या है वो भी पता है। सर्वज्ञ माना जिसको वर्तमान भी पता है, भूत भी पता है, भविष्य भी पता है। सरल शब्दों में जिसको आज का भी पता है, जिसको बीते हुए कल का भी पता है, जिसको आने वाले कल का भी पता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों को जो जानता है वो सर्वज्ञ है, इसलिए उसका टाइटल क्या है, वो त्रिकालदर्शी है। यही टाइटल है ना उसका, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञाता, सर्वज्ञ। हम मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ, वर्तमान का ही पूरा कहां याद रहता है। चाचा जी ऐसे करते हैं और सारे घर में ऐनक ढूंढते हैं, मेरी ऐनक किधर गई है ना, चाचा जी की ऐनक बचपन में पढ़ते थे ना। हमें वर्तमान का ही पूरा पता नहीं होता है। चलो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये आपके पास्ट को बता सकता है, ये भविष्य बता सकता है, लेकिन पास्ट या भविष्य क्या 100% राइट बताता है? वो बताता है ऐसा होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी। मौसम विभाग भी क्या बोलता है, आने वाले 24 घंटों में मौसम का ये रुख होने की संभावना है, जरूरी नहीं कि वो रियल होने जा रहा है, संभावना। हम अल्पज्ञ है और वो सर्वज्ञ है, तो ज्ञान की संपदा उसके पास असीम है। और कौन सी संपदा है, गुणों और शक्तियों की, और इसीलिए परमात्मा की जब महिमा करेंगे तो उसकी उसकी महिमा में दो शब्द यूज करते हैं, या तो कहेंगे सूर्य या तो कहेंगे सागर। जैसे ज्ञान का सूर्य भी कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा हुआ अज्ञान अंधेर विनाश। क्यों सूर्य से भेंट कर डाली, चांद से क्यों नहीं? क्योंकि चांद आज अगर पूनम का चांद है तो कल अमावस का भी चांद बन सकता है, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा चमकता ही रहेगा, प्रकाश देता ही रहेगा। इसलिए उसकी भेंट या तो सूर्य से या तो सागर से। कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के हम प्यासे। तो सागर से क्यों भेंट कर डाली, नदी से क्यों नहीं की? क्योंकि नदी आज भरी है, कल सूख भी सकती है, लेकिन सागर तो सदा भरपूर रहेगा। तो वो गुणों का सागर है, शक्तियों का भंडार है असीम, इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिमान है। जो कोई नहीं कर सका वो कर लेगा, क्योंकि वो क्या है, शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। तो देखो, अकेले परम शब्द से कितनी सारी बातों का रहस्य खुल गया है ना। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। इस परम शब्द को लेकर इतनी सारी बातें की हमने कि वो सर्वोच्च है, जिसका ही दूसरे शब्दों में अर्थ क्या अर्थ निकलता है, उसका कोई पिता नहीं है, वो स्वयं सबका पिता है। उसका कोई शिक्षक नहीं है, वो सर्व का शिक्षक है। उसका कोई गुरु नहीं है, वो सर्व का गुरु। इसलिए उसको कहते वो पिताओं का भी पिता है, वो शिक्षकों का भी शिक्षक है, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो पतियों का भी पति है, वो नाथों का भी नाथ है। तो देखो, एक शब्द पर हमने फोकस किया, कितनी सारी जानकारी हमको अपने आप मिल गई। तब कहा कंफ्यूजन से बाहर निकलने का सिंपल तरीका। तो अब आइए आत्मा शब्द पर। वो भी एक आत्मा है, लेकिन क्या है, परम है। तो परम तो उस आत्मा का विशेषण हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया ना, पर है तो आत्मा ना, है तो वो भी एक आत्मा। अब आत्मा के बारे में हमने सुबह जान लिया, हमने सुबह ही जान लिया कि आत्मा क्या है। इसीलिए कहा गया, खुद को जानोगे तो खुदा को जानना सहज हो जाएगा। बगैर खुद को जाने खुदा को जानने की कोशिश करोगे, क्लैरिटी आना मुश्किल है। और यही कारण है यहाँ पर खुदा से पहले खुद का परिचय दिया जाता है, जो दिन में हमारे शीलू दीदी भी कह रहे थे, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जब तक खुद को रियलाइज नहीं किया उसको हम रियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन सुबह हमने रियलाइज कर लिया ना स्वयं को, तो कैसी है आत्मा उसको फाइंड आउट करना है ना। वो भी एक आत्मा है तो क्या है वो, तो हम आत्मा क्या है, ज्योति स्वरूप है। तो चूंकि वो पिता भी एक आत्मा है, वो भी ज्योति स्वरूप है। लेकिन परम शब्द आ गया तो उसमें एडिशन क्या है कि बेशक हम भी ज्योति बिंदु है, वो भी ज्योति बिंदु है, लेकिन दोनों के प्रकाश की इंटेंसिटी अलग अलग है। क्योंकि वो पावर हाउस है ना, उसकी प्रकाश की इंटेंसिटी बहुत है, हमारी लिमिटेड है। और दूसरा, हमारी लिमिटेड इंटेंसिटी है साथ साथ हमारा प्रकाश जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी डिम डिम डिमर डिमर होता जाएगा। लेकिन चूंकि वो बैटरी तो है ही नहीं, जन्म तो लेता नहीं, तो बैटरी उसकी वो तो पावर हाउस है ना, तो उसका प्रकाश सदा सर्वदा एक रस बना रहेगा। तो वो भी ज्योति स्वरूप, मैं भी ज्योति स्वरूप। फिर उसके लिए कोई शब्द जोड़ देते हैं, निराकार ज्योति स्वरूप। क्यों निराकार ज्योति स्वरूप कहा? क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं मां के गर्भ से ये देह रूपी वस्त्र जो धारण करते हैं, तो हमारे पास ये भी एक आकार है, ये भी एक आकार है ना, कि जिसको ही भूल कर दी और मिरर के सामने गए और कहा मैं हूं, है ना, तो ये आकार है हमारे पास। लेकिन परमात्मा चूंकि अजन्मा है, मां के गर्भ में जाकर हमारी तरह कॉस्ट्यूम नहीं पहनता, वो वाला आकार उसके पास नहीं है, इसके लिए शब्द जोड़ दिया निराकार। वरना देखा जाए तो आत्मा भी निराकारी है जब तक इस आकार में नहीं आई तो, है ना। लेकिन उसके लिए निराकार शब्द ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो ऐसा वाला आकार लेता ही नहीं है। तो रूप क्लियर हो गया, परमात्मा का रूप क्या है। अब आते हैं नाम पर, परिचय देख रहे हैं ना उसका, तो परिचय में यही बातें होती है, नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, धाम क्या है। तो हमने रूप देखा, अब आते हैं नाम पर। मनुष्य आत्माओं के नाम संज्ञावाचक हैं, गुणवाचक हो कर्तव्यवाचक हो ये जरूरी नहीं है। किसी का नाम अगर शांति है, जरूरी नहीं है कि वो शांति के गुण वाली हो, कई बार तो अपोजिट दिखता है ना। तो हमारा संज्ञावाचक जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं किसको बुला रही हूं कैसे पता चले, तो फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी नाम रख दिया। जरूरी नहीं कि वो गुण है उसके पास, वो कर्तव्य है उसका। लेकिन परमात्मा के जितने भी नाम है वो कैसे है, गुणवाचक है कर्तव्यवाचक है। और इसलिए उनके नाम को आप देखेंगे क्या है, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ या फिर पापकटेश्वर, विश्वेश्वर। या तो नाथ पे एंड होगा या तो ईश्वर पे, और उसके पहले उसका या तो गुण है या तो कर्तव्य है, है ना। विश्वनाथ जो पूरे विश्व का नाथ है, सोमनाथ जो सबको सोमरस अमृत पिलाता है, पशुपतिनाथ जो आत्माएं पशु प्रवृत्तियों में आ गई है उनको उससे भी निकालकर देवत्व की ओर लेके जाता है, पशुत्व से निकाल देता है, जो पशुपतिनाथ। पाप कटेश्वर जो पापों को काट देता है। तो गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम अनेकानेक है, क्योंकि गुण भी तो उसके बहुत है, लेकिन उन सब गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नामों का सार जिस एक शब्द में आता है वो एक शब्द है शिव। इसीलिए तो देखो उसको हम क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या अर्थ है शिव का? शिव का शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है शांति, शिव का अर्थ है बिंदी पॉइंट। तो परमात्मा अगर हमारे पाप काट रहा है तो हमारा कल्याण ही कर रहा है ना, हमारे दुखों को हरता है तो कल्याण ही तो किया ना, ऐसा कल्याण कि अब हम शांत हो गए, है ना। इसीलिए कहा सारे नामों का जो सार जिस एक शब्द में आ जाता है वो शब्द है शिव, और इसीलिए हम उसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, मन अविनाशी है, शिव है माना कल्याणकारी है, और सुंदर है माना, सुंदर है माना बेदाग है, परम पवित्र है, है ना वो परम पवित्र, क्योंकि आता ही नहीं ना जन्म मरण के चक्र में। हम जन्म मरण के चक्र में आते तो हमारे मूल स्वभाव के ऊपर दूसरे क्लाउड्स तैयार हो जाते हैं ना, वो तो आता ही नहीं है, तो दाग लगता ही नहीं है, तो परम पवित्र। बेदाग चीज ही तो सुंदर लगती है ना, तो परम पवित्र, तो उसका नाम शिव। ये असली नाम, ओरिजिनल नाम, कि जिसमें सब नामों का सार आ जाए। तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है? हम कहते हैं हम उसकी संतान है, यही कहते हैं ना। तो अगर संतान है, पिता का नाम पता भी चल गया, फिर भी पिता को किस नाम से बुलाएंगे? किस नाम से बुलाएंगे? घर में बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको सिखाते हैं, बेटा तेरे पापा का नाम ये है, बोल बोल बोल, बोलता रहता है, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ करता रहता है ना, जब तक वो राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है तब तक उसको बार बार पूछते हैं, बताते जाते हैं और पूछते जाते हैं। जिस दिन उसको राइट प्रोनाउंसिएशन करना आ गया, उसके बाद भी अगर वो पापा को उस नाम से बुलाएंगा ना, बेटा पापा को ऐसे बुलाते हैं, सिखाया तो आपने था, सिखाया तो आपने था, उसको तो पता भी नहीं था, लेकिन क्यों सिखाया जा रहा था कि पता हो। बाकी चूंकि संबंध पिता और पुत्र का है तो एक छोटा सा प्यारा सा जिसमें हमारा प्यार भी भरा हो पिता के लिए, रिगार्ड भी भरा हो, और छोटा सा प्यारा सा शब्द हम यूज करते हैं। कोई बाऊजी यूज करते हैं, कोई पिताजी यूज करते हैं, कोई बाबा यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं बाबा। बच्चा छोटा जन्म लेता है वो पहले यही बोलता है बाबा बाबा, क्योंकि इजी है ना दो होंठ इधर करना। तो हम प्यार से उसको शिव बाबा कहते हैं। वो शिव बाबा मतलब वो ज्योति स्वरूप आत्मा, ना कोई दाढ़ी मूछ वाला कोई बाबा। क्लियर? क्योंकि हम पहले से ही देख कर आ रहे हैं ना, वो अजन्मा है। तो नाम और रूप क्लियर। अच्छा, जो सर्वोच्च होगा वो सर्वमान्य भी होगा। तो जरा चेक कर लेते हैं कि परमात्मा का जो ये स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, क्या सबको मान्य है। तो देखो, जितने भी धर्म पिताए हैं सबने उस परमात्मा के परिचय में क्या कहा। उदाहरण के लिए जीसस क्राइस्ट परमात्मा के लिए क्या कह रहे हैं, गॉड इज लाइट। ऐसे नहीं करते हैं गॉड इज लाइट, कैसे करते हैं, ऊपर उंगली कर रहे हैं। परमात्मा क्या है, लाइट है, प्रकाश है, उंगली ऊपर है। तीन बातें उसमें आ जाती है उसकी, वो एक है, वो ऊपर है, वो प्रकाश है। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक जी वो क्या कहते हैं, उनकी भी उंगली किधर है, एक ओंकार प्रकाश स्वरूपम है। उनकी पूरी महिमा अकाल मूरत अजूनी सैभम निर्वैर, पूरी लंबी उसकी महिमा आती है जब साहेब में कहें कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में, कि वो अकाल मूरत है। जिस मूरत को काल नहीं खा सकता वो तो आत्मा ही है ना, वो प्रकाश स्वरूप है, वो एक है, उंगली ऊपर है। मुस्लिम धर्म के अंदर परमात्मा की महिमा किन शब्दों में, नूरे इलाही, वो एक नूर है। कैसा नूर है, इलाही अर्थात अल्लाह वाला नूर, ये वाला नूर नहीं, ये जो लाइट जल रही है, प्रकाश। शब्दों में सिर्फ फर्क है भाषाओं के कारण, वरना अर्थ तो एक ही है। यहां तक कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ एक उनका सेट जो ध्यान जब करते हैं तो अपने सामने एक प्रतिमा रखते हैं जिसको वो चिन्ह कौन से की कहते हैं, जो ओवल शेप का है। उनको पूछो ये क्या है तो कहते शांति का दाता है। इनडायरेक्टली किस तरफ इशारा है, उस परमात्मा के तरफ। क्योंकि महात्मा बुद्ध हो चाहे महावीर जैन हो, ध्यान जब कर रहे हैं किसका साक्षात्कार किया, प्रकाश का ही तो साक्षात्कार किया है ना। तो प्रकाश स्वरूप की मान्यता हर जगह मिलती है, यहां तक कि हिंदू धर्म जिसको कहा सोमनाथ विश्वनाथ पशुपतिनाथ रामेश्वर, ये सब क्या है, इन मंदिरों में क्या रखा हुआ है, शिव ज्योतिर्लिंगम। सबसे प्राचीन से प्राचीन मंदिर शिवालय, जहां पर शिव ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की गई है। और ये शिव ज्योतिर्लिंगम शब्द अपने आप में तीन शब्दों का योग है। एक है शिव, दूसरा है ज्योति, तीसरा है लिंगम। तो ये लिंगम जहां रखा है मंदिरों में, हम क्या कह रहे हैं? लिंग माना आकार, आकृति, चिन्ह। तो हम उस आकार को क्या कह रहे हैं? ये आकार उस हस्ती का है जिसका नाम शिव है, जिसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। कितनी क्लैरिटी है, कितनी क्लैरिटी है। तो क्लियर हुआ कि जो सर्वोच्च है वो सर्वमान्य भी होना चाहिए, और दिख गया कि परमात्मा का ज्योति स्वरूप सर्व को मान्य है। हमने जिस राम और कृष्ण को आज दिन तक अपनी आस्था के अनुसार परमात्मा का दर्जा दे रखा था, वो राम भी, वो श्री राम भी रामेश्वरम में क्या कर रहे हैं? शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मतलब उनसे भी ऊंचा कोई है ना? कृष्ण गोपेश्वरम में, वृंदावन में क्या कर रहे हैं? गोपेश्वरम शिवलिंग की को नमन कर रहे हैं। तो जिनको हमने परमात्मा का दर्जा दिया, वो तो परमात्मा के ज्योति स्वरूप के मान्यता में है। यहाँ तक कि जिसको हमने शिव शंकर कह के मिला दिया, वो शंकर भी ध्यान मुद्रा में दिखाया है, तपस्वी मूर्त दिखाई है, सामने क्या है? शिवलिंग। तो शिव शंकर अलग हुआ या नहीं हुआ? ऊंचे की ही तो साधना की जाएगी ना। ये तो हमारी थोड़ी सी भूल हो गई, हमने कहा शिव कहो शंकर कहो। क्यों? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी ना, तो बातें क्या हो रही थी? धुंधली धुंधली हो गई सब। धुंधले में तो ऐसा ही होता है ना, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। आंख में जब मोतियाबिंद होता है तो यही होता है ना, होती कुछ और है, दिखता कुछ और है, यही होता है ना। तो धुंधलापन आ गया बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण, और हमसे भूले होती गई। यहाँ तक कि देवियों की जो बात करें, उनके लिए भी हम क्या कहते हैं? असुर संहारिणी शिव शक्तियां कहते हैं हम। अर्थात वो शिव से शक्तियों को ले लेकर असुरों के संहार करने में सफलता प्राप्त करती है। तो शक्तियों से भी ऊंचा कौन? वो शिव। तो आज दिन तक मैंने अपनी आस्था के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार इन देवी देवताओं को परमात्मा का दर्जा दे रखा था, लेकिन आज मुझे क्लैरिटी हुई कि जिनको मैंने परमात्मा का दर्जा दे रखा है, वो स्वयं उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी समझ की कमी रह गई, जिस कारण मैंने इनको परमात्मा कह दिया। जहां तक आस्था की बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कहे मेरे लिए तो भगवान मेरी माँ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्यता, माँ अगर भगवान है तो सबको ही माने ना उसको भगवान। एक अकेले के लिए थोड़ी भगवान है, सभी को ही माने ना उसको भगवान। दूसरी बात, मैं अपनी आस्था के वश किसी को भी परमात्मा का दर्जा दे सकती हूँ, पर उसमें मुझे कुछ नुकसान है या नहीं है? ये बच्चा जो बैठा है, आप सपोज उसके पिताजी हैं, लेकिन वो आपको पिताजी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो जो उधर बैठे वो मेरे पिताजी, ये नहीं पिताजी, कुछ नुकसान होगा उसको, होगा उसको नुकसान या फायदे में है वो, दो दो पिताजी का मिलेगा उसको हाँ, फायदे में है या नुकसान में है? नुकसान में। कैसे? जो उसका पिताजी है उसको वो पिताजी नहीं मानता है, तो जितना उसका हक बनता था ना उसमें थोड़ी कमी आएगी ना, क्योंकि वो मानता ही नहीं है ना। सिर्फ बच्चे के रूप में जन्म लेना काफी थोड़ी होता है, वारिस बनने के लिए वारिस की क्वालिटियां भी तो शो करनी पड़ती है ना। लेकिन वो तो मानता ही नहीं, उसको तो पिताजी वाला कुछ रिगार्ड ही नहीं मेरे लिए, वो तो उसको पिताजी मानता, ठीक है वो देगा उसको और क्या करेगा। और जिसको पिताजी मान रहा है वो तो पिताजी है नहीं, तो प्यार प्यार में तो थोड़ा थोड़ा देता रहेगा। जब वर्षा देने की बात आएगी क्या करेगा? अपने दो बेटे हैं, ये तीसरा बेटा कहता है ये मेरा पिताजी है, बराबर बांटेगा तीनों में? नहीं, ये मेरा बेटा थोड़ी, बेटे जैसा है, तो दिखता है नुकसान। तो हमने जो परमात्मा है नहीं लेकिन परमात्मा का दर्जा दे दिया, तो जो सही वाला परमात्मा है उससे हमारी दूरी खड़ी हो गई, उससे जो हमें वर्षा मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि वो मेरा पिता तो अनलिमिटेड है, वो कितना कुछ दे सकता था। ये पिता जिसको मैं बांध बैठा हूं वो तो लिमिटेड है ना। अगर दिया भी समझो, चलो उसके मन में आया कि चलो इस तीन बेटों को मैं एक जैसा कर देता हूं, आखिर तो लिमिट है ना उस पिता की, जबकि अनलिमिटेड के हम बच्चे हैं, तो अनलिमिटेड से कितना कुछ मिल सकता है। इसलिए आज दिन तक आस्था के अनुसार भले मैंने जिसको भी परमात्मा का दर्जा देकर यहां स्थान दिया, आज भी दिए रहो कोई हर्जा नहीं, लेकिन नजरिया बदल दो कि इन्होंने भी उस परमात्मा से वो शक्तियां, वो ज्ञान, वो गुण प्राप्त करके इतने हाई चार्ज बैटरी है, तो मैं प्रेरणा लेती रहूं कि मैं भी उनसे कनेक्ट होके इतनी स्टेज तक पहुंच सकती हूं। ये नजरिया बदलना होगा। स्थान भले दिए रहो कोई हर्जा नहीं, बल्कि मेरे सामने एक मॉडल होगा कि उससे शक्तियों को प्राप्त करके इतनी स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं कि हम भी अनेकों पर लुटा सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि परमात्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप, परमात्मा का नाम शिव, और परमात्मा के गुणों की शक्तियों की बात तो पहले ही करके आ गए हम, कि सागर से भेंट करते हैं, जो गुण मेरे हैं सेम उसके भी है, जो गुण मेरे पास है गागर जितने हैं उसके पास सागर जितने हैं, और जो गुण मेरे पास है वो तो है पर जो मेरे पास है उससे भी ज्यादा उसके पास है। मैं थोड़ी मुक्ति दे सकती हूँ, वो मुक्ति दाता है ना। मैं थोड़ी त्रिकालदर्शी बन सकती हूँ, वो त्रिकालदर्शी है, उसका ज्ञान पाकर मैं मास्टर त्रिकालदर्शी बन सकती हूँ, पर अल्टीमेट त्रिकालदर्शी तो वही है ना। तो उसकी असंख्य गुण और शक्तियां हैं, और उन गुण और शक्तियों को हम भक्ति मार्ग में क्या कर रहे थे, मांग रहे थे। मांगना नहीं है, मैं उसकी संतान हूँ, अधिकार से प्राप्त करूँ। क्यों मांगना माना भिखारीपन? क्यों? कितने बड़े बाप की बच्ची हूँ, रॉयल संस्कारों में थोड़ी आता है मांगना। अधिकार से प्राप्त करे, और अधिकार से प्राप्त करे का मतलब क्या होता है, अधिकार से प्राप्त करने का मतलब होता है सूर्य से हम मांगेंगे क्या गर्मी दे प्रकाश दे, सूर्य के सन्मुख हो जाओ, अधिकार रूप में उसका प्रकाश और गर्मी मिलता रहेगा। फाउंटेन के सन्मुख हो जाओ, अधिकार रूप में शीतलता मिलती रहेगी। लेकिन अगर सन्मुख नहीं है, सिर्फ मांगते रहे तो मिलने वाला, बस यही हमारा हाल हुआ था। सन्मुख गए नहीं क्योंकि पहचान ही नहीं थी, तो सन्मुख जाते कैसे, सन्मुख गए नहीं तो अधिकार से प्राप्त नहीं किया। मांगने से तो सूर्य का भी प्रकाश नहीं मिलने वाला है, वो तो फैला रहा है ना। आपको चाहिए तो सन्मुख हो जाओ, आपको चाहिए तो अपने दरवाजे खिड़की खोल दो। आपको दरवाजे खिड़की भी नहीं खोलूंगा, सन्मुख भी नहीं आऊंगा, लेकिन ब्लेम करता रहूंगा, सूर्य तो मुझे रोशनी नहीं देता है। तो इसमें गलती किसकी, अपनी उसकी नहीं है। तो गुणों और शक्तियों का भंडार। नेक्स्ट क्या आता है परिचय में, कर्तव्य। क्या है उसका कर्तव्य, एक तरफ तो कहा वो अकर्ता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं उसका कर्तव्य है। जी हाँ, अकर्ता होते हुए भी वो कर्तव्य करता है। कैसे, वो फिर जब हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन सुनाएंगे आपको कि कैसे परमात्मा का अवतरण हुआ है, वो सारी बात उसमें आएगी। अभी सिर्फ हम कर्तव्य को समझ लेते हैं, और कर्तव्य को समझने के लिए वो श्लोक याद कर लीजिए। कौन सा, महाभारत सीरियल देखते थे, कौन सा श्लोक बजता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक लंबा सा श्लोक जिसका सिंपल सा अर्थ, जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानी होती है, वो समय होता है मेरा इस धरा पर आने का, और उस समय मेरा कर्तव्य होता है उस अधर्म का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना। तो इस श्लोक में उसका समय भी आ गया, उसका कर्तव्य भी आ गया। तो वो कर्तव्य कर रहा है, कैसे, ज्ञान देकर, क्योंकि हम अज्ञान अंधकार में भटके थे ना। एक बच्चा भी गलत रास्ते पर चला जाए, आप क्या करोगे उसको राइट पथ पे लाने के लिए, समझ प्रदान करोगे, उस समझ को वो प्रैक्टिकल में ला सके, उसको प्यार दोगे, उसको शक्ति दोगे, सपोर्ट करोगे, यही तो करके आप उसको राइट वे में लाओगे ना। वो परमात्मा भी हमको अधर्म से निकाल धर्म की ओर कैसे लेके जाएगा, ज्ञान देकर, प्यार देकर, शक्तियां देकर। वो विधि दे देता है, अब मुझसे कनेक्ट हो जाओ, शक्ति और गुणों को भरते चलो, तो जो ज्ञान जीवन में मिला है उसको प्रैक्टिकल करना सहज हो जाएगा। तो जीपीएस का जमाना है ना, जीपीएस लेकर दुनिया के किसी भी कोने में सेफली पहुंचते हैं। परमात्मा का ये रूहानी जीपीएस ज्ञान, प्यार और शक्ति, उसको जीवन में भर दे चलो, और देखो जीवन कैसे सफलता की ऊंचाइयों पर चलता जाता है, कैसे जीवन खुशनुमा बनता जाता है। तो कर्तव्य क्लियर, बचा क्या, धाम। कहाँ का रहने वाला, ये भी पूछा था ना प्रश्न में, ये भी था ना, तेरा काम क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है। तो धाम कौन सा है, एक तरफ तो हम कहते हैं वो कण कण में है, तुझ में है, मुझ में है, और दूसरी तरफ कोई बात नहीं बनती, मैंने तो ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, नीचे वाले पे क्यों नहीं छोड़ा, कण कण में है ना, नीचे वाला है ना, वो नहीं, वो नीचे वाला नहीं है, वो ऊपर वाला है, वो अवतरित होता है, ऊपर से नीचे आने को ही तो अवतरण कहते हैं। तो ऊपर वाला है, ऊपर रहता है, बाप और बच्चे साथ में रहते हैं। तो आत्मा कहाँ रहती है? सुबह हमने देख लिया, कहाँ रहती है आत्मा? इस पांच तत्वों की दुनिया से पार एक दूसरी दुनिया है। आप फ्लाइट में जाते हैं ना, तो जब फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है एयरप्लेन क्राफ्ट को, तो कहते हैं उस समय उसको बहुत पावर की जरूरत होती। क्यों? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेंसेट कर सके इतनी उससे भी ज्यादा उसको पावर चाहिए। लेकिन आफ्टर रीचिंग टू सर्टन हाइट, एक कुछ हाइट पर पहुंच जाने के बाद ग्रेविटेशनल पुल उसको प्रभावित नहीं करता है, और इसलिए वहां पर कम पावर से भी होता है। अर्थात इससे पता चलता है प्रकृति के जो पांच तत्व है ना, उनका प्रभाव कुछ कुछ दूरी तक है, बस यही सिद्ध हुआ ना इससे। तो परमात्मा ने कहा प्रकृति के पांच तत्वों का जहां प्रभाव खत्म हो जाता है, वहां एक दूसरी दुनिया है। वो प्रकृति के पांच तत्वों वाली दुनिया नहीं है, क्योंकि कहा कि जहां प्रकृति का प्रभाव खत्म हो गया, यही कहा ना, तो वह प्रकृति नहीं है, प्रकृति के पांच तत्व नहीं है, वहां छठा तत्व है, जिसको कहा ब्रह्म तत्व, ब्रह्म महतत्व। और उस नाम को लेकर उस दुनिया का नाम पड़ गया ब्रह्मलोक। तो ये नीला आसमान दिखता है, उसके ऊपर एक दूसरा आसमान जिसको कहा सुनहरे लाल रंग का आसमान, और ये पूरा स्पेस इसके बीच में एक खाली स्पेस है, क्योंकि प्रकृति तो वहां है नहीं, झाड़ पेड़ पशु पंछी, और न ही वहां पर हम आत्माओं का घर है, तो आत्मा कॉस्ट्यूम के साथ भी नहीं है वहां पे, तो कोई दीवारें नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाली स्पेस। और उस खाली स्पेस में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, साइलेंस वर्ल्ड है वो, शांति धाम है वो। उस खाली स्पेस में, उस शांति धाम में, उस ब्रह्म लोक में हम आत्माएं ज्योति बिंदु सितारों की तरह लटक रही हैं, और परमात्मा सितारा हमसे ऊपर वो भी वही विद्यमान है। जो बाप का घर सो बच्चों का घर, जो बच्चों का घर सो बाप का घर, क्योंकि संबंध ही ऐसा है ना। बेटा से पूछो ये गाड़ी किस, मेरी गाड़ी है, खरीदा था क्या उसने, जेब में कौड़ी नहीं, बोलता मेरी गाड़ी है, क्योंकि संबंध ऐसा है ना, मेरे बाप की गाड़ी सो मेरी गाड़ी। सो चाहे वो मेरा घर बोलो, चाहे मेरे बाप का घर बोलो, दोनों ही वहीं के रहने वाले हैं। तो ये है परमात्मा का परिचय कि उस धाम का रहने वाला तो उसकी परमानेंट एड्रेस है, लेकिन यहाँ पर भी आता है टेम्पररी कर्तव्य करने के लिए। तो वर्तमान समय पिछले 80-82 वर्षों से परमात्मा यहाँ आकर अपना कर्तव्य कर रहा है, और चूंकि वो गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता है, इसलिए हमारी तरह यहाँ बैठा नहीं रहता है। इसलिए देखो उसको क्या कहते हैं, नंदी पर सवार दिखाते हैं, है ना, उसकी सवारी दिखाते हैं नंदी बैल पर। वास्तव में नंदी बैल पर शिव की सवारी, वास्तव उसमें तो एक व्यक्ति दिखा दिया, पर शिव माना वो ज्योति बिंदु, और वो बैल माना एक पुरुष तन जिसमें वो परम आत्मा प्रवेश करती है, उसको बोलने के लिए मुख मिल जाता है, देखने के लिए आंखें मिल जाती है, आशीर्वाद देने के लिए, मतलब एक एक, और वो अपना कर्तव्य किया और चला। सवारी 24 घंटे नहीं की जाती है किसी पर भी, सवारी तो काम के लिए गाड़ी में बैठे, डेस्टिनेशन पर पहुंचे, गाड़ी से उतरो, तो वो आता है जाता है, आता है जाता है। पिछले 82 वर्षों से वो अपना ये कार्य कर रहा है, अधर्म का विनाश कर सत धर्म की स्थापना। और अधर्म किधर है? धर्म माना जो धारण करने योग्य, अधर्म अधर्म माना जो धारण करने योग्य नहीं, उसको भी धारण करके बैठना। धारण करने योग्य मेरा खुद का स्वभाव, जो मैंने बनाया नहीं, बना बनाया है, लेकिन मैंने बनाया हुआ स्वभाव कौन कौन सा है? गुस्से वाले बन गए हैं, नफरत वाले बन गए, तो वो अधर्म है, उसको मिटाने के लिए वो आता है। तो ये परमात्मा का पूरा परिचय। अब इस परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए हमारे बीच पधारे हैं हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी। तो कमेंट्री के द्वारा जो परमात्मा का परिचय मिला, उसके आधार से परमात्मा अनुभूति हम शीलू दीदी के माध्यम से उनके सानिध्य में अभी करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी, हर शख्स यहां पर अब तक मानो अंधेरे में था, वह कौन है और क्या है पता उनके मका का, किस तरह उनसे अपने दिल की कहे दास्ता, न था पता क्योंकि हर शख्स ढूंढ रहा था उसे अलग अलग गलियों में। आज इस दुनिया में हर व्यक्ति ठग रहा है खुद को और भरमा रहा है सारे जहां को हर तरह से। आज इंसान खड़ा है हर चौराहे पर जेबों में लिए सारे मूल्य भी शायद ईश्वर से मिलने के लिए, पर मिल न सका सरूर अभी तक शायद किसी भी मन को। ऐसे समय पर आपने एक के बाद एक सारे राज खोले और हमने पाया कि कितना आसान था खुद से बात करना और खुदा को साथ रखना। मानो हर प्यासी आत्मा को जो आज यहाँ उपस्थित है, आपने एक त्राण दे दिया है, शायद हमारी कई जन्मों की प्यास अब बुझ चुकी है। कितनी आशा है राहें उनसे मिलने की, कैसे वह अपनी बाहें फैलाए बैठा है हमें उनमें समाने के लिए। ईश्वर के लिए बताया आपने हमें, हमने पाया कि जैसे ही हमने खुद को सही मायनों में जाना, गोया खुदा हमें खुद ही मिल गया। कैसे करें धन्यवाद आपका दीदी जी। कहा गया है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागे पाए। दीदी जी, आपने हमें गोविंद का पता आज अच्छी तरह से पूर्णतया से दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।
मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव मेरा का, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।
हम सभी इस गीत द्वारा परमात्मा की महिमा सुन रहे थे। अब हमें यह पहचान मिल गई कि मैं कौन हूं और मुझ आत्मा के पिता कौन है। मैं एक दिव्य ज्योति हूं, प्रकाश पुंज, चमकता हुआ सितारा, प्रकृति के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूं। इस शरीर के जन्म से पहले भी थी और इस शरीर के मृत्यु के बाद भी रहूंगी। यह जीवन तो केवल एक पड़ाव है इस सृष्टि मंच पर बहुत लंबी यात्रा की। अनेक देह रूपी चोले बदले, अनेक पाठ बजाए, अब मुझ आत्मा को वापिस जाना है अपने शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, जो मुझ आत्मा की निराकारी दुनिया है, जहां मैं आत्मा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहती हूं, मन और बुद्धि से एक उड़ान भरकर पांच तत्वों से पार उस अखंड ज्योति के महतत्व में, शांति के धाम में पहुंच जाए। एक बेहद प्रकाश की दुनिया जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति शांति है। यहां मैं आत्मा अपने शांत स्वधर्म में स्थित हूं, मन की आंख परमात्मा को देखिए, जो मुझ आत्मा के परम पिता है, जो शांति के सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान, शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर, शिव पिता के सानिध्य में मैं आत्मा शांति स्वधर्म का, शांति के धाम में अनुभव कर रही हूं। उस शांति के परम स्रोत से मुझ आत्मा को शांति की किरणें मिल रही है और मैं आत्मा शांत स्वरूप उस शांति की किरणों में समा रही हूं। शांति की बिंदु, शांति के सागर में समा जाए। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने शांत स्वधर्म में स्थित हूं। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं। शिव पिता के सानिध्य में धन्य हो गई। मुझ आत्मा ने अपना मूल स्वरूप पहचान लिया। शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूं। मेरे सर्व संबंध एक शिव परमात्मा से है। वो ही मेरे माता पिता, बंधु सखा, स्वामी सतगुरु है। उनसे सर्व शक्तियां पाकर मैं आत्मा तृप्त हो गई। जो पाना था वो मैंने सब कुछ पा लिया। धन्यवाद शिव बाबा, धन्यवाद। आप सर्वशक्तिमान हो, सर्व गुणों के सागर हो। दाता हो, तीनों कालों के ज्ञाता हो। अब मेरे संबंध केवल आपके साथ है। आपसे ही मुझे सर्व प्राप्तियां हो रही है। आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा शांत स्वरूप हो। आप प्रेम के सागर हो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। आपसे शांति और प्रेम पाकर मुझे सर्व आत्माओं पर ये लुटाने हैं, बांटने हैं, ताकि सभी आत्माएं शांति और प्रेम के स्वरूप बन जाए, शांति की शक्ति प्रेम की शक्ति। मैं आत्मा सब पर लुटा रही हूं, सभी आत्माएं शांति और प्रेम का अनुभव कर रही है। इसी शक्ति से सारे विश्व में शांति आ जाएगी, प्रेम का वातावरण हो जाएगा और यह संसार सुखमय बन जाएगा।